بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، كامياب زندگی دیکھو، کسی بھی انسان کو نظر اپنی فکر کو اگر صحیح کرنا ہے، نظریاتی شکست کا کوئی علاج نہیں. اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے چند بنیادیں ہیں. ان بنیادوں کو زندہ کریں گے تو فرق پڑے گا. سب سے پہلا فرض ہے ماں باپ کے ذمے، پھر معلمین ہیں، پھر ماحول ہے، پھر معاشرہ ہے. تو اس کے لیے سورہ لقمان میں پہلی بنیاد بتائی کیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، توحید اور رسالت. انسان کے اندر ایمان بھی مضبوط ہو اور اعمال بھی مضبوط ہو. اور دوسری وصیت فرمائی، وصین الانسان بوالدیہ حسنا، ماں باپ کی خدمت کرنا. اب تیسرا بنیادی یقین آخرت. تیسری بنیاد کیا ہے؟ آخرت. یعنی آخرت کو بھی انسان یاد رکھے، جہاں ہمیں جانا ہے. یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی سحرت فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. تیسری بنیادی آخرت کا استحضار ہے. پہلا توحید و رسالت، دوسرا ماں باپ کی، ماں باپ کو پہچاننا اور ماں باپ کی خدمت کرنا کہ کون ہے. وہی ہماری جنت ہے، ہم چاہے تو اس کو بناویں، ہم چاہے تو اپنی جنت کو بگاڑے، ہمارے ہاتھ میں. تیسری چیز آخرت کا استحضار، آخرت کا استحضار ہے. جزا اور سزا کا دل میں یقین بٹھانا، جزا اور سزا کا دل میں یقین بٹھانا. اچھے اور برے کے درمیان فرق بتانا ہے. مفہوم ہے کہ اے میرے بچے، یا بنیہ، تو ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کرے یا برائی کرے. تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے، تو ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کرے یا برائی کرے. رائی کا دانہ چھوٹی سی، پہاڑ کی گار میں چھپ کر کرے، یعنی تو اگر چھپ کر کرے، کس کے پہاڑ کے اندر چھپ کر کرے، یا خلاؤں میں اڑ کر کرے، ہواؤں میں اڑ کر کرے، زمین کی تہ میں گم ہو کر کرے، یا جہاں چاہے تو کرے، اندھیرے میں کرے یا اجالے میں کرے، جو بھی چھوٹی برائی ہو یا چھوٹی نیکی ہو، تو جہاں کہیں کرے، خلوت میں کرے، تنہائی میں کرے، سب کے سامنے کرے. تیری رب کی نظر اتنی طاقتور ہے، تیری رب کی نظر اتنی طاقتور ہے کہ خلاؤں سے بھی، فضاؤں سے بھی، اور زمین کی تہ سے بھی، اور پہاڑ کی غاروں سے بھی، جہاں بھی تو کوئی عمل کرے گا، تیرے عمل کو نکال کر باہر لائے گا اور قیامت کے دن تیرے سامنے کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آج لوگ اپنی نیکی چھپاتے ہیں. ارے نیکی تو ہمیں چھپاؤ نہ چھپاؤ، اللہ کو جس نیکی کا اظہار کرنا ہوگا وہ تو کرے گا. برائی چھپاتے ہیں. دیکھو اللہ تعالی جب چاہے گا، ایک ذرہ برابر بھی اگر اچھائی کی ہوگی یا ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، اور کیسے بھی چھپ کر کے ہوگی، کل قیامت کے اللہ تعالی تیرے سامنے کر دے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ अतैना बिहा वकफा बिना हासिबीन। एक राई, एक राई, राई जब समझते हैं यानी चीनी, शक्कर का दाना उठाकर हथेली पर रख कर देख ले तो मस्टर्ड रख ले तो ये राई के दाने के बराबर है। अल्लाह ताला कह रहा है कि इस दाने के करोड़ वे हिस्से के बराबर भी, ये दाना कितना छोटा, इसके करोड़ों हिस्से करो और उसके बराबर भी अगर तूने कोई अमल किया अच्छा या बुरा तो मैं उसे खींच कर तेरे सामने कर दूंगा। अल्लाह कितनी जबरदस्त खबर रखने वाला है। अब राई के दाने का करोड़ों हिस्सा करो तो समझ में ही नहीं आएगा, फरमाए तो इतनी भी नेकी करेगा तो वो भी तेरे सामने आएगा और इतनी बुराई करेगा तो वो भी आ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, हम छुप नहीं सकते, हम वहां अल्लाह को बना नहीं सकते, वहां हमारी जबान से हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह सब कुछ लाएगा, उसके पास सारा हिसाब है। अल्लाह का हिसाब बहुत जबरदस्त है, उसमें कोई भूल नहीं। अतैना बिहा, खींचूंगा और तेरे सामने कर दूंगा और फिर मैं कहूंगा वकफा बिना हासिबिन, है कोई मेरा जैसा हिसाब करने वाला, फिर मैं कहूंगा है कोई मेरा जैसा हिसाब करने वाला, कैसा हिसाब कोई रखता हो, फिर तुम इनकार नहीं कर सकते। ये तीसरी चीज है जो हमने अपने माशरे में जिंदा करनी है कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, ये एहसान, ये एहसास जवान की जवानी को पाक कर देगा, ताजिर के तराजू को सीधा कर देगा और वकील के कलम को दुरुस्त कर देगा, काजी के फैसलों को दुरुस्त कर देगा। जी ये तीसरी चीज क्या है, आखिरत का इस्तेहजार। बस आखिरत होनी चाहिए, आज हम आखिरत को भूल चुके हैं, आखिरत ओझल हो चुकी है, ऐसा समझ रहे गोया कि अब दुनिया से जाना ही नहीं है, बस खाली मर कर खत्म हो जाना है। खत्म नहीं, आखिरत है, वहां पर अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लाएंगे, पूरी जिंदगी का हिसाब होगा, बल्कि हमारी वीडियो फिल्म वहां खोल दी जाएगी। जी हर एक की उतर रही है, हमें पता भी नहीं, आज की साइंस ने तो हमें बता दिया, अल्लाह ताला ने पहले से रख दिया है कि वो कैमरे लगे हुए हैं और वीडियो उतर रही है, सब कुछ है, लिखा हुआ भी है और वो भी है, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला वहां चालू कर दे, कहा मेरे बंदे तू देख ले तेरी फिल्म, तू कहाँ गया, क्या खाया, क्या सोचा, क्या इरादा किया, क्या नेक काम किया, जर्रा बराबर भी सब हाजिर है, इसमें से किसी का इनकार करता है, नहीं कर सकता। जी सब कुछ, इसलिए अभी से बस इतना ईमान बना लो कि अल्लाह हमें देख रहा है, देख नहीं रहा है, अल्लाह के जासूस हमारे साथ है और सब कुछ लिख रहे हैं और सब वीडियो में उतर रहा है, ये भी याद रखना। एक एक लम्हा की, सो रहे हैं उसका भी पता है, जाग रहे हैं उसका भी पता है, कहाँ क्या सोचा है, क्या खाया है, क्या कहाँ जा रहे, सोच का भी फिक्र का भी सब कुछ लिखा जा रहा है। जी अगर तौबा सही शराइत के साथ होगी तो वो डिलीट हो जाती, वो डिलीट होगी, फिर उसके बाद किया तो वापस आ जाएंगी, बात की पिछला गया, तौबा सही शराइत उसकी जो शराइत थी तो वो पूरा का पूरा अल्लाह ताला डिलीट कर देते हैं, खत्म, फिर नया जो काम करेगा वो नया उसकी बनेगी, फिर उसके बाद फिर तौबा करेगा, फिर इसीलिए तो कहते हैं तौबा कर लो ताकि पूरी फिल्म डिलीट हो जाए, पूरा फरिश्तों का लिखा हुआ भुला दिया जाता है। एहसास मुल्क, मलिक महमूद मुजफ्फर बादशाह था गुजरात का, उसकी सल्तनत बड़ी ताकतवर थी, उसने अपने दरबार में एक आदमी मुकर्रर किया हुआ था कि जिसके हाथ में कफन रहता था, अपने दरबार में एक आदमी मुकर्रर किया हुआ था जिसके हाथ में कफन रहता था, उसको काफूर लगा हुआ था, कफन को खुशबू काफूर होती वो लगी हुई थी, उसके जिम्मे था कि जब तुम देखो कि मैं कोई जुल्म का फैसला सुना रहा हूं, उस आदमी को कहा हुआ था कि जब तुम देखो मैं कोई जुल्म का फैसला सुना रहा हूं तो तुमने खड़े होकर इस कफन को लहरा देना है, मैं समझ जाऊंगा, मौत याद दिला देना। देखो कैसे कैसे बादशाह है, कितना इंसाफ। बोले जुल्म का फैसला करते तुम देख लो, तुम्हें पता चले, मेरे सामने कफन लहरा देना, कफन दिखाना। बादशाह तो बादशाह ही होते हैं, तो जब वो कोई ऐसा फैसला करता तो खड़ा होकर कफन लहरा देता था। बस कफन का लहराना होता था कि मलिक महमूद बेहोश होकर वहीं तख्त पर गिर जाता था, और जब होश में आता तो अपना फैसला वापस ले लेता। यह है एहसास आखिरत कि किसी माँ ने उसके दिल में यह एहसास बिठा दिया था, किसी माँ ने उसके दिल में एहसास बिठा दिया था कि बादशाह होकर भी वो इस एहसास के साथ जिंदा रहा और बादशाही में ही जन्नत कमा गया, और आज चपरासी होकर जुल्म नहीं छोड़ता, चपरासी होकर जुल्म नहीं छोड़ता, वो बादशाह होकर, क्योंकि बादशाह के हाथ में तो सब कुछ होता है, वो उसके बावजूद वो जुल्म नहीं, चपरा के हाथ में कुछ भी नहीं है और फिर भी वो जुल्म से नहीं छोड़ता है। ये हमारी तीसरी बुनियाद है कि एक जिंदगी है जिसका हमें मौत के बाद सामने करना है और वहां हमें अल्लाह के सामने पेश होना है, लिहाजा हम आजाद नहीं। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم آزاد ہو اور تم پر کوئی نگران نہیں اور تمہیں لوٹ کر نہیں آنا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یہ بات ذہنوں سے نکال دو کہ موت کے بعد تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، موت کے بعد تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، نہیں نہیں بلکہ ایک طاقتور نظام ہے۔ تو تین بنیادیں ہوئی، اب چوتھی بنیاد کیا ہے؟ نماز۔ چوتھی چیز جس پر ہم نے اپنے معاشرے کو اٹھانا اور تشکیل دینا ہے، فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے اے بیٹی نماز نہیں چھوڑنا، نماز پڑھو نماز پڑھو، کوئی معاشرہ اسلامی بن نہیں سکتا نماز کے بغیر، معاشرہ اسلامی کہلا نہیں سکتا نماز کے بغیر، ساری اعلی صفات موجود ہو لیکن نماز نہ ہو تو معاشرہ اسلامی نہیں کہلائے گا، نماز زندہ ہو اور باقی اعمال میں کمی کوتاہی ہو تو پھر بھی یہ بہت بڑی پہچان ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے، لوگ بھاگتے ہیں مسجدوں کو، نماز سے اسلامی معاشرے کا پتہ چلتا ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، ہے نا، جیسے جمعہ ہے، عیدین ہے اور اس کے علاوہ پانچ وقت کی نماز ہے۔ فتح مکہ پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جب پکڑ لیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کر آئے، جب ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، ابھی تو ابو سفیان تھے، تو جب فتح مکہ پر جب ان کو پکڑ لیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے خیمے میں ٹھہراؤ، ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو اپنے خیمے میں ٹھہرایا۔ جب فجر کی اذان ہوئی، کیونکہ رات میں ہی پکڑے تھے اور ابھی آئے تھے، کہا ان کو ٹھہراؤ، فجر کی اذان ہوئی تو لوگ دوڑے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے، یعنی وہ گھبرا گیا، بولے یہ کیا ہو رہا، اذان ہوئی تو دوڑے، کہا یہ کیا کر رہے، کیا حملے کی تیاری کر رہے، کیونکہ وہ تو مشرک تھے، ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مار دیا جائے، اس نے پوچھا کیا حملے کی تیاری کر رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بلکہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، دیکھو اسلامی معاشرہ، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہنے لگا یہ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں، ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ لوگ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں، کہاں ہاں ہر بات مانتے ہیں، چاہے وہ مطالبہ رکھے کہ جان بھی دے دو اور مال بھی دے دو तो ये जाने भी दे देते हैं और माल भी कुर्बान कर देते हैं, ये भतीजे की बात इतनी मानते हैं। अबू सुफियान ने कहा, अब्बास मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं। अबू सुफियान ने कहा, अब्बास मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, लेकिन तेरे भतीजे जैसा मुल्क और बादशाही मैंने देखी ही नहीं कि जिसकी इतनी बात मानी जा रही हो। मैंने देखी ही नहीं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अबू सुफियान ये मुल्क नहीं बल्कि ये नबूवत है, ये नबूवत है, बादशाही नहीं। बादशाहों की ऐसी नहीं मानी जाती, नबूवत के नबी की मानी जाती है। हमारे माशरे की बड़ी पहचान नमाज है, नमाज। या बुनैया अकीमिस सलाह, ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, वालिदैन ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, आखिरत इन्हा इन तकु मिसकाल हब्बतिन, नेकी और बदी का शऊर, और चौथी चीज है नमाज। नमाज को जिंदा करो। अगर ये मेहनत माँ बाप ने की होती तो क्या आज 95% बेनमाजी होते? ये मेहनत अगर माँ ने और बाप ने की होती तो क्या हमारी नस्ल के 95% बेनमाजी नजर आते? कोई खाल खाल होता जो नमाज छोड़ता, और सबकी दौड़ होती मस्जिद की तरफ, सब भागते मस्जिद की तरफ। एक मिसाल से बात समझो, मेरा नौकर 2000, 10000, 20000, 40000 तनख्वाह वाला, कोई भी तनख्वाह हो, मेरे सामने बैठा हो, मेरा नौकर इतनी बड़ी तनख्वाह वाला मेरे सामने बैठा हो, उससे कहूं भाई बात सुनो, वो आगे से हां हूं न करे, मैं कहूं से भाई मेरी बात सुनो, तो जाहिर बस गांव है, बोलो बोलो, वो कुछ भी न कहे, खामोश। फिर मैं कहूं भाई बात सुनो, वो फिर भी चुप करके देखता रहे। फिर मैं कहूं भाई बात सुनो, वो फिर भी चुप करके देखता रहे। फिर मैं चौथी दफा कहूं भाई बात सुनो, वो फिर भी इसी तरह चुप करके देखता रहे। फिर मैं पांचवी दफा कहूं भाई बात सुनो, वो फिर भी इसी तरह चुप करके देखता रहे। मेरी पांच पुकार पर अगर वो न हां करे और न हूं करे, तो मेरे दिल में उसके बारे में क्या आएगा बताओ? क्या मैं उसे नौकरी पर रखूंगा? क्या मैं उसे बर्दाश्त करूंगा? मैं कहूंगा तू क्या मुतकब्बिर आदमी है, हमारी बिल्ली हमें मियाओ, हमारी बिल्ली हमें मियाओ करती है, हालांकि मैंने उसे दिया क्या है, हालांकि हम उसको क्या देते, 40-50 हजार देते। आपको मालूम है ये दुकान वाले सेलमैन को क्या देते, ज्यादा ज्यादा 3000-4000। ये मिल वाले मजदूरों को क्या देते हैं, ज्यादा ज्यादा 3500-5000। मैं आज के जमाने में तो चूल्हा भी नहीं जलता इतने हजार में, 4000 में आज के जमाने चूल्हा भी नहीं जलता, लेकिन उसके बावजूद उनका एहसान कितना है। वो एक दिन न जाए तो उस दिन के पैसे भी काट लेते हैं, ऐसे बखील लोग होते हैं जी। तो वो अल्लाह जिसने हमें सब कुछ दिया है और वो हमें पांच मरतबा पुकार रहा है, ए भाई सुनो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अजान आती है ना, पांच मरतबा पुकार रहा है और हम हां और हूं नहीं कहते, नमाज के लिए नहीं जाते, तो फिर वो हम पर कितना गुस्से होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं नाराज होता हूं तो बारिशें बेवक्त करता हूं, बारिशें बंद नहीं बेवक्त करता हूं। बेवक्त होना यह भी नुकसान है और बंद होना यह भी नुकसान है, तो बारिशों को बेवक्त करता हूं, पैसा बखीलों को देता हूं ताकि वो रोक के रखे, और हुकूमत जालिमों को देता हूं और बेवकूफों को देता हूं। अल्लाह अकबर, आज के हालात बता रहे कि अल्लाह हमसे नाराज है, है कि नहीं? क्या कहते हैं, बारिशें बेवक्त करता हूं, पैसा बखीलों को देता हूं और हुकूमत जालिम और बेवकूफों देता हूं। तो आजकल पैसा बखीलों के पास है जी, हुकूमत बेवकूफ के पास है और बारिशों का निजाम दरहम बरहम है। जमीन तड़प रही है, कलिया आसमान की तरफ देख रही है, लेकिन इंसान की नाफरमानियों ने उनको भी तड़पा के रख दिया है और प्यासा छोड़ दिया गया है। फिर पूछा, या अल्लाह, देखो ये फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, अर्ज किया, या अल्लाह तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? कितनी निशानी बताई? तीन निशानी बताई। बारिश बेवक्त करता हूं, पैसा बखीलों को देता हूं, और हुकूमत जालिम और बेवकूफ। हुकूमत से मुराद खाली वो हुकूमत नहीं, बल्कि हमारे कौम के बड़े भी ऐसे ही बनते हैं, जालिम और बेवकूफ। चेयरमैन जी, हर जगह पर बड़े वही होंगे। तो आज देख लो, तुम गौर करो तो हर जगह पर वही मिलेगा। और पैसा बखील, कितने बखील है कि बेचारे गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा है और खुद अपने अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पूछा, या अल्लाह जब तू राजी होता है तो क्या करता है? कहा, जब मैं राजी होता हूं तो बारिश वक्त पर करता हूं, पैसा सखियों को देता हूं और हुकूमत समझदारों को देता हूं। उसका उलट, अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, उसने पैसा बखीलों को दे दिया है। जो अपने ऊपर खर्च करते हुए लाखों उड़ा देते हैं, गरीबों को देते हुए उनकी मुट्ठी में भी पसीना आ जाता है, कैसे दू? और अपने ऊपर खर्च करते हुए शादियों में कितना उड़ा देते हैं, फजूलियात में कितना उड़ा देते हैं, हाँ, लेकिन गरीबों को देते हुए हाथों में पसीना छूटता है। पांच दफा बुलाया उस अल्लाह ने और वो उठकर ना आया तो मेरा क्या रवैया होगा? मैं कहूंगा, निकल जाओ, हिसाब करो, उठ जाओ, और अल्लाह दिन में पांच दफा बुलाने आता है। एक आदमी अपने नौकर को पांच दफा बुलाए और वो ना आए तो उसका हिसाब करके उसको निकाल देता है, और अल्लाह दिन में पांच दफा बुलाने आता है, हय्या अलस्सलाह, और हर दफा में दो दफा बुलाता है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ, आ जाओ नमाज। क्या मिलेगा वो भी बता दिया, हय्या अलल फलाह, कामयाबी मिलेगी। मैं तो नौकर के कोई न कोई काम जिम्मे लगा रहा हूं, और अल्लाह फरमा रहा है, आजा आजा, मुझे सजदा कर, तुझे कामयाबी मिलेगी, हय्या अलल फलाह। अब तेरे लिए कामयाबी मस्जिद में है, अब मैंने जब बुला लिया है तो अब तेरी कामयाबी दुकान में नहीं है, तेरी कामयाबी घर में नहीं है, अब मैंने जब बुलाया है तो अब तेरी कामयाबी मेरी बात पर लब्बे कहने में है, मस्जिद की तरफ आने में है, मेरे हुक्म को पूरा करने में है। जब हुक्म पूरा कर ले फिर तेरी कामयाबी उसमें भी है। फरमाया, आ जाओ, अब तेरे लिए कामयाबी मस्जिद में है, आ जाओ, आ जाओ। वो चुप करके बैठा हुआ है, अजान सुनी वो सोया हुआ है तो जागता नहीं, बैठा है तो उठता नहीं, उसके बावजूद भी अल्लाह की इनायत और रहमत बराबर उसके बंदों पर जारी है जी। मैं तो अपने नौकर को पांच दफा न मानने पर उठाकर बाहर फेंक दू, मेरा अल्लाह अगर ये करता तो आज तो 97% इंसान मस्क हो चुके होते, दुनिया से मिट चुके होते, उनके चेहरे बिगड़ चुके होते थे, लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह फिर भी नेमतें दे रहा है। कितना उसका करम है, कितना उसका एहसान है कि 20 बरस से एक आदमी को पुकारा, 20 बरस से एक आदमी को पुकारा, एक दफा हमारे फैसलाबाद में, हम तो आदमियों को मस्जिद में लाते हैं, मैंने उनसे बात शुरू की तो कहने लगा, आज हम पहली दफा मस्जिद में आए हैं। कितना, 20 बरस तक एक आदमी को पुकारा, जब वो मस्जिद में आया है तो मैंने उससे जब बात शुरू की कहने लगा, आज हम पहली दफा मस्जिद में आए हैं। मैंने समझा इस मस्जिद में पहली दफा आए होंगे, हो सकता है किसी और मस्जिद में गए होंगे, उनकी उम्र कोई 35 से 40 साल के दरमियान थी, तो मैंने कहा इस मस्जिद में पहली दफा आए हो? तो कहने लगे नहीं, हम वैसे ही जिंदगी में पहली दफा आए हैं। मैंने कहा तुमने कभी नमाज नहीं पढ़ी? कहने लगे आज तक नहीं पढ़ी। मैंने कहा जुमा तो पढ़ा होगा? कहने लगे आज तक नहीं पढ़ा। मैंने कहा कोई ना कोई ईद तो पढ़ी होगी? कहने लगे आज तक नहीं पढ़ी। और कौन है? मुसलमान। कितना जर्फ है मेरे अल्लाह का, जो हम अपने नौकर को एक दिन में 5 दफा पुकारे और वो हमारी बात न माने तो हम उसको निकाल देते हैं। वो अल्लाह दिन में 5 मरतबा पुकार रहा है और 20 साल तक पुकार रहा है और फिर भी वो बंदा नहीं आता, तो फिर भी अल्लाह उस पर से हवा बंद नहीं करते, रोजी बंद नहीं करते। देखो ये आदमी के 20 साल के बाद पहली मरतबा मस्जिद में आया हूं, कहा कोई नमाज नहीं पढ़ी। कितना जर्फ है मेरे अल्लाह का, जो इतना कुछ देखकर भी कहता है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर देता है, मोहलत देता है, मोहलत देता है, कभी तो तौबा करोगे, कभी तो तौबा करोगे। इतना जुल्म आप देख रहे और किसी को कोई गम नहीं। क्रिकेट अगर हार जाए और सबको गम हो रहा है, कितनी बड़ी बदबख्ती कि एक फजूल और लहव लहब और नाफरमानी की चीज पर तो गम और सदमा और अफसोस, और 95% गाफिल है, नमाज नहीं पढ़ता। नमाजी भी नहीं रोए, उलमा भी नहीं रोए, तहज्जुद गुजार भी नहीं रोए। हमारी पहचान है, कोई नहीं रोता। या बुनैया अकीमिस सला, उठो नमाज पढ़ो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की आखिरी नमाज। कितना खौफ का आलम था करबला में, करबला का जो जो मंजर था बहुत अजीब खौफनाक मंजर था करबला में। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने पैगाम भिजवाया कि हमें नमाज पढ़ने दो जोहर की, क्योंकि असर तो पढ़ ही नहीं सके, उससे पहले ही शहीद हो गए। तो शुमुर ने कहा तुम्हारी नमाज कबूल ही नहीं। शुमुर जो उनका कातिल था, जिसको यजीद ने भेजा था, जैद ने, जियाद ने भेजा था, तो शुमुर जो था तो उसने कहा तुम्हारी नमाज कबूल ही नहीं। मैंने कहा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, अगर आले रसूल की कबूल नहीं तो फिर किसकी कबूल है। उसी हाल में हमने जोहर की नमाज पढ़ी, उसी खौफ और वहशत और दहशत के आलम में। आलम को बयान करने के लिए अल्फाज कहां से लाओ, अल्फाज ही खत्म हो गए। इतना खौफ का आलम था, उस हाल में भी, उस हाल में भी नमाज छोड़ी नहीं जा सकती। क्रिकेट मैच देखते हुए कितनों ने नमाज छोड़ी, बहुत सुने। तुम्हें तो उस पर रोना चाहिए था कि इतने लोगों की नमाजें बर्बाद हो गई, उस पर अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान हार गया। अल्लाह करे और हारे जो कौम अपना शऊर मुर्दा कर चुकी हो, जो कौम इज्जत और जिल्लत के मायार मिटा चुकी हो, जिन्हें दोस्त और दुश्मन की तमीज न रही हो, उसका क्या बनेगा। ये हमारी बुनियाद टूटी और टस से मस नहीं। घर की तो दीवार टूट जाए तो हाई निकल जाती है, घर की तो दीवार टूट जाए तो हाई निकल जाती है, और हमारी बुनियाद टूट जाए तो टस से मस नहीं होते। एक पौधा सूख जाए तो हाई निकल जाती है। हमने बाग लगवाया, आज मैं अभी घर से होकर आया हूँ और चंद पौधे सूखे हुए थे। 20-25 एक्टर में चंद पौधों का सूख जाना कौन सा बड़ा मसला है, लेकिन उसके बावजूद इन पौधों का सूख जाना भी मुझे चुभ रहा था। दिल में आकर कोई चीज लग रही थी कि ये क्यों सूख गए, जिससे लगवाया था। मैंने उसे बुलवाया और पूछा कि पौधे क्यों सूख गए हैं, अभी तो वो फलदार भी नहीं हुए। जहां से खून बहा वहीं दर्द होता है, जहां से खून बहा वहीं दर्द होता है। दीन पे हमारा लगा क्या है, कुछ भी नहीं लगा। ये हमारी बुनियाद है कि दीन पर लगा नहीं है, इसलिए फरमाया इस दीन पर जान और माल लगाओ तो फिर दीन के मिटने का गम आएगा। अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, जिस पर हमारा माल लगा है उस पर तो अफसोस होगा, हमारी घर की दीवार के टूटने पर अफसोस होगा, क्योंकि इस घर की दीवार में मेरा माल लगा है। या बुनै अकीमिस सलाह, ये था चौथी बुनियादी वजह। और पांचवी बुनियाद क्या है? दावते इलल्लाह। पांचवी बुनियाद क्या है? दावते इलल्लाह। वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, मेरे बेटे बलाइयों का दाई बन और बुराइयों का मिटाने वाला बन, ये तेरी जिंदगी का मकसद है, ये तेरी जिंदगी की मंजिल और महवर है कि तू भलाइयों का फैलाना वाला और बुराइयों को मिटाने वाला बन। जो काम तबलीग वाले कर रहे हैं और उन पर एतराज हो रहे हैं कि कहां से नया दीन आ गया, कहां से नया दीन आ गया, चलो, और ये चिल्ला, ये चलो कहां से लिखा हुआ है, ये चिल्ला 4 महीने कहां से लिखा हुआ है। मैंने कहा कि जहां लिखा हुआ है वहां पढ़ते नहीं, और जहां पढ़ते हैं वहां लिखा ही नहीं। जी, जहां लिखा हुआ है वहां पढ़ते नहीं, और जहां पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ नहीं, तो कैसे समझ आएगा? जंग और नवाए वक्त पढ़ने से थोड़ा ही समझ में आएगा। यानी वो जो न्यूज वगैरह जो पढ़ते हैं, या डायजी जो रिसाले वगैरह, जो जंग नाम के और नवाए वक्त ये रिसाले निकलते, फरमाए उसको पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा समझ में आएगा, डाइजेस्ट पढ़ने से बात थोड़ा ही समझ में आएगी। ये माँ बाप से कहा जा रहा है कि इसको पहले दिन से ही दावत इल्लाह का खूगर बना दो। मैगजीन जी, जब उसको पढ़ोगे तो वहां तो कहां लिखा हुआ मिलेगा। इसको तबलीगी बना दो कि भलाइया फैलाता फिर रहा है और बुराइयों को मिटाता फिर रहा हो। वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, हमारी पांचवी बुनियाद है कि भलाइयों के दाई बनो, बुराइयों के मिटाने वाले बनो। इस बुनियाद पर ही तो इस्लाम मदीने की गलियों से निकला और काशगर तक चला गया सिर्फ 80 साल में, सेनेगाल तक चला गया सिर्फ 80 साल, 80 बरस में, जुनूबी फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन तक और इस्तुम्बुल के दरवाजे तक सिर्फ 80 ईयर्स में पहुंच गया। ये कोई मुल्क फतह करने की हवस न थी। अगर मुल्क फतह करने का शौक होता तो मगर उन आने तो फिर उनको आने की क्या जरूरत थी। हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु के जमाने में तो मकरान आने की क्या जरूरत थी। अगर मुल्क फतह करने का शौक होता तो मकरान आने की क्या जरूरत थी। हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु के जमाने में मकरान फतह हुआ है तो हजरत उमर ने पूछा, इस मुल्क का हाल क्या है? तो बताने वाले ने बताया कि क्या पूछते हो, मा उहा कलीलुन व बला उहा शदीदुन, पानी इसमें है नहीं और बीमारियां उसमें बेशुमार। ये मकरान, ऐसे मुल्क को फतह करने की क्या जरूरत थी। अगर उनको मुल्क फतह करना था तो मकरान को क्या करता जिसमें पानी ही नहीं है, जिसमें बीमारियां है, कि वो जमीन के फाते बनकर नहीं निकले थे बल्कि वो दिलों के फाते बनकर निकले थे कि इंसानियत को जुल्म से निकालकर और कुफर से निकालकर अल्लाह का पैगाम सुनाकर उन्हें इस्लाम की चादर में लाना था। इंसानियत को जुल्म से निकालकर और कुफर से निकालकर अल्लाह का पैगाम सुनाकर उन्हें इस्लाम की चादर में लाना, ये काम था उनका। इसलिए जो सहरा में है वहां भी जाओ, और जो पहाड़ में है वहां भी जाओ, और जो जंगल में है वहां भी जाओ, जहां तक उनकी जिंदगी ने वफा की है वो इस पैगाम में हक को लेकर निकले हैं। यहाँ तक कि 80 बरस में आबाद दुनिया का बहुत बड़ा दायरा था जहां इस्लाम की शुआए और इस्लाम का सूरज और उसकी किरण चमक चमक कर दिलों को भी रोशन किया था और कायनात को भी रोशन कर दिया था। अल्लाह अकबर। तो देखो, ये इस उम्मत का वो फरीजा है जिसको बुलाए हुए इतना जमाना गुजर चुका है, ये इस उम्मत का वो फरीजा है, ये अमर बिल मारूफ दावत का, कि जिसको बुलाए हुए इतना जमाना गुजर चुका है कि अब भूलना भी भूल चुके हैं, ये भी भूल गए कि हम भूले हुए हैं। एक तो ये है कि हम भूल गए, मैं भूल गया, और फिर एक वक्त ये भी आता है कि ये भी भूल जाता है कि मैं भूला हुआ हूं। तबलीग वो अमल है जिसका भूलना भी भुला दिया गया है। तो पांचवी बुनियाद है, क्या है? दावत, अम्र बिल मारूफ नहीं, भलाई का हुक्म करना, बुराई से रुकना। अब छठी चीज है, छठी बुनियाद है सब्र। इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे। لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة يا الله ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دوزخ کے عذاب سے اور اس کی آزمائش سے اور قبر کی عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے اور مالداری کے شر سے اور فقیری کی آزمائش سے اور یا اللہ تنگ دستی سے اور تیری پناہ لیتے ہیں سخت دل ہونے سے اور غفلت سے والغفلتی والعیلتی والذلتی والمسکنہ واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والسمعت والریا اور یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں محتاجگی سے اور کفر سے نافرمانی سے ہٹ دھرمی سے اور شہرت سے اور دکھاوے کے لیے عمل کرنے سے واعوذ بک من السمم والبکم والبرص والجنون والجزام وسیء الاسقام اور یا اللہ ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں بہرے پن ہونے سے بیماری بہرے پن کی بیماری سے اور گنگے پن ہونے کی بیماری سے اور یا اللہ سفید جسم پر داغ پڑنے کی بیماری سے اور پاگل پن کی بیماری سے اور کوڑ کی بیماری سے اور بقیہ جتنی خراب بیماریاں ہیں ان سب سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انی اعوذ بک بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون یا اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں تیری عزت کے صدقے میں کہ تیرے معبود کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات سے کہ تو ہم کو گمراہ کر دے، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما آزمائش کی سختیوں سے اور بدبختی کی گرفت سے اور برے فیصلے سے، بری موت سے، وسوء القضاء وشماتت الاعداء اور دشمنوں کی ہنسی مذاق اڑانے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما ان چیزوں کی برائی سے جن کو ہم جانتے ہیں اور ان کی برائی سے جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما ان عمل کے برے نتیجے سے جو میں نے کیا اور اس سے بھی جو میں نے نہیں کیا، یعنی برے عمل کے برے نتیجے سے جو میں نے کیا یا جو میں نے نہیں کیا۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتك وجميع سخطك یا اللہ ہم پناہ لیتے ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما اسے جو موجودہ نعمتیں جو آپ نے ہمیں دی ہے اس کے زائل ہونے سے، اس کے چھین جانے سے، وہ تحول عافیت، اور وہ عافیت اور وہ راحت جو آپ نے ہمیں دی ہے اس کے چلے جانے سے ہماری حفاظت فرما، وہ فجاء نقمتک اور اچانک کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، وہ جمیع سخطک اور اپنے تمام غصے کے اسباب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت میں جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور یا اللہ پوری امت میں جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور یا اللہ جو مقروض ان کو قرض سے بری فرما، جو بیمار ہے ان کو جسمانی روحانی صحت عطا فرما، اور جو مرحومین ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔